हम स्टैंडिंग वेलकम देंगे। तीन तीन तालियां, तीन तीन, एक दो तीन। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। ईश्वरी ज्ञान प्राप्त हुए अभी 15 दिन हुए थे और 16वें दिन हमारी जो निमित टीचर बहन जी बॉम्बे की बात है, ये उन्होंने कहा कि आज हम आपको मुरली सुनाएंगे। वो कहानी बन गई वैसे मुरली की, क्योंकि ज्ञान की मुरली की बात उस समय हमें पहले से नहीं बताई थी। तो हम 8 दोस्त थे क्लास में, हम एक दो को देखने लग गए और फिर हमने हिम्मत रख के बहन जी से कहा, बहन जी आप जो रोज ज्ञान सुनाते हैं ना वही सुनाओ। हमारे एक दोस्त हैं, उनके पास 6-8 मुरलियां हैं अलग अलग साइज की, तो मुरली हम उनसे सुन लेंगे। तो बहन जी को भी हंसी आ गई, तो कहने लगी कि वो मुरली की बात नहीं है, ये ज्ञान की मुरली है। क्योंकि हम जो आपको रोज ज्ञान सुनाते हैं उसका आधार जो है वो मुरली है, जो परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा तन में प्रवेश करके सुनाते हैं और वो फिर हमारे पास छप करके आती है। तो फिर हम लोगों ने पहली पहली मुरली सुनी और मुरली सुनते ही उसमें एक लाइन आई कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का पोस्ट बॉक्स है। बच्चे चाहें तो शिव बाबा को पत्र लिख सकते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, पांडव भवन माउंट आबू। वैसे मुरली पहली बार आप में से जब भी कभी किसी ने सुनी होगी एकदम समझ में आ गई थी पहले दिन, क्योंकि हमें तो समझ में नहीं आ रही थी। तो बहन जी एक एक बात हमें समझा रही थी, तो मुश्किल से 1.5 या 1.5 पेज ही मुरली सुना सकी थी, पर उस 1.5 पेज के अंदर ये बात आई। तो हमें एक पुराना गीत याद आ गया, जब हम सर्विस ज्वाइन की थी इंडियन नेवी की, तो एक बार हमारे एक साथी ने हारमोनियम पर गीत सुनाया था, भगवान तुझे मैं खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं। तो मुरली सुनने से थोड़ा वो गीत याद आया कि अब तो भगवान अपना पता दे रहा है, तो क्यों नहीं खत लिख करके हम अपना परिचय भगवान को दे दें। तो दूसरे दिन हम लेटर लिख करके बहन जी के पास ले गए और 15 दिन के जो अनुभव था, जो सीखा था, जिस बातों पर अटेंशन गया था, वो सब लिखी थी उसमें। बहन जी ने अपने कवरिंग लेटर के साथ वो लेटर बाबा को भेज दिया, साकार बाबा को। اور کچھ دن کے بعد بابا کا اتر آیا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو لال پینسل سے بابا لکھتے تھے, فل اسکیپ پیپر کو چار حصے میں کر کے اس میں سے چوتھے حصے پر لکھا ہوا تھا. بابا کا پتر ایسا جو لوکک میں ماتا پتا یا بھائی اوم شانتی, تو بابا کو جو پتر لکھا اس میں اپنا لوکک پریچے, اور جو 15 دن میں ہم لوگوں نے کچھ گیان کی باتیں سنی تھیں اس بیسس پر کہ ہم نے کیا سیکھا ہے, اور اس سے ہمیں کچھ لابھ جو ہوا تھا 15 دن میں تھوڑا سا وہ ورنن کر کے بابا کو لکھا. کچھ دن کے بعد بابا کا پتر آیا, تو ایسا لیٹر کبھی کوئی لوکک میں نہیں لکھتا. کچھ شبد مجھے یاد ہیں, نورے رتن نرویر شیر پرتی, یاد پیار بعد پتر بچے کا پایا ہر شایا, اب جب بے حد کے باپ کو پہچانا ہے تو ان سے 100% پوترتا سکھ اور شانتی سمپن ستیوگی دیوی سوراج کا ایشوری جنم سدھ ادھیکار 21 جنم کے لیے پراپت کرنا ہے سہج راج یوگ بل سے. ایک دن باپ اور بچے سنمکھ ملیں گے, یاد پیار اپنے سبھی دوستوں کو دینا, اور نیچے سائن تھے بابا کے اوم. آپ کو ایسا پتر آئے تو کیا کریں گے, ہاں خوش ہوں گے نا, بہت من خوش ہوا, امنگ آیا, پھر دوسرا لکھا. تو پہلا جو لکھا تھا وہ ایک پیج لکھ کے بھیجا تھا, بابا کے 2 پیج آئے تھے, پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے 3 پیج لکھ کے دیا. بابا کے 4 پیج آئے, پھر ہم نے 6 پیج لکھا. جیسے ایک نئی لو سٹوری شروع ہو گئی تھی. بہت مزہ آتا تھا بابا کو پتر لکھنے کا بھی, اور بابا کے پتر جو آتے تھے وہ سننے کا, کیونکہ سندھی اسکرپٹ ہوتی تھی, اس کے اوپر ہمارے یا تو ایشو دادی یا چندراس دادا ہندی میں لکھ کے بھیجتے تھے, لیکن پھر بھی ہماری جو بہن ٹیچر وہ پڑھ کے سناتی تھی تو اچھا لگتا تھا. اور 1 مہینے کے اندر ہی ہمیں بہن جی نے تھوڑا اپنی انتی کے لیے چارٹ لکھنا بھی سکھایا تھا. ایک مہینے کے بعد 1959 کی بات کر رہا ہوں میں, فیبرری میں ہم نے شروع کیا تھا 1 فروری سے, اور مارچ کے 1st ویک میں ماتیشوری جی سرسوتی جی मम्मा जिनको प्यार से कहते थे वो बेंगलोर से बॉम्बे आई थी, और उस समय उनके बॉम्बे आने पर सेवा केंद्र का स्थान चेंज हुआ। हम लोग नेवी में थे, हमारा जहाज रिपेयरिंग आदि के लिए ड्राई डॉक में दाखिल हुआ, कुछ दो तीन महीना उधर रहना था, और वो बिल्कुल सेंटर के 5 मिनट दूरी पर था। लायंस गेट एक जगह है बॉम्बे में, लायंस गेट से निकलते थे और सामने वाटरलू मेंशन सेंटर था, कोलाबा की बात है ये, रीगल सिनेमा के सामने। हम लोगों के कारण नेवी में जो भाई थे, हम सब के लिए मातेश्वरी जी का क्लास शाम को 5 से 6 रखा गया। फिर हम अपने शिप पर जाकर भोजन करके 7 बजे लौट के आते थे, 7 से 8 फिर बाबा की मुरली सुनते थे। तो मम्मा की मुरली, फिर बाबा की मुरली, मम्मा की मुरली, मम्मा डायरेक्ट सुनाती थी, और बाबा की मुरली फिर दादी रतन मोहिनी सुनाती थी। उर्मिला दीदी हमारी जो टीचर आजकल वो गांधीधाम में हैं, वो हमारे साथ कुछ और भाई आ जाते थे नेवी के, तो नयों को फिर कोर्स कराती थी। मम्मा उस समय 1 महीना रही थी वहां, तो आप सोच सकते हैं 1 महीना हर रोज अगर मम्मा की मुरली सुनेंगे तो ज्ञान की अवस्था कितनी अच्छी हो जाएगी, कितनी स्पष्टता हो जाती थी, क्योंकि मम्मा की मुरली में और बाबा की मुरली में थोड़ा अंतर रहा है हमेशा। मम्मा किसी एक विषय पर बड़ी गहराई से मुरली उनकी होती, और बाबा की कहते ही थे कि बाबा तो सागर है, सागर की तो लहरें बहुत होती हैं, तो सागर की लहरों में बाबा की एक मुरली में आप देखेंगे 20-25 पॉइंट होती हैं। तो मुरली सुनने से दो घंटे, और सेवा केंद्र पर जो वातावरण मिलता था उसकी मदद से एक इतना अच्छा अनुभव होने लगा। उसमें खासकर मैंने देखा कि 1 महीने के बाद, 1-1.5 महीने के बाद अपनी जो मानसिक स्थिति है उसमें बड़ा आनंद आने लगा अंदर ही अंदर। और बाबा के साथ पत्र व्यवहार तो होता रहा, मम्मा वापस आ गई बॉम्बे से मधुबन में, और फिर हम जैसे सेंटर पर जाना, मुरली सुनना, मेडिटेशन करना, उन्हीं दिनों में बहन जी ने चार्ट रखना सिखाया था। वो चार्ट जो हम लोग लिखते थे तो बहन जी बाबा के पास भेज देती थी, साकार बाबा हमें पत्र के द्वारा फिर चार्ट के बारे में भी कुछ ना कुछ समझाते, करेक्शन करते। ऐसे करते करते बीच में 3 मास के बाद ہمارا شپ بدلی ہوا، پہلے پرانے جہاز پر تھے، نئے جہاز اسی سمے آئے تھے تو نئے جہاز پر ٹرانسفر ہو گئی۔ انگلینڈ سے وہ جہاز آئے تھے تو جو سٹاف پہلے اس جہاز پر تھا، خاص ہماری برانچ کے جو لوگ تھے، ان کو چھٹی جانا تھا تو ہمیں چھٹی جلدی نہیں مل سکتی تھی۔ پھر نہیں تو پہلے پلان تھا 3 ماس کے بعد بابا سے ملنے جائیں گے، کیونکہ بابا کے پہلے پتر میں ہی لکھا ہوا تھا ایک دن باپ اور بچے سنمکھ ملیں گے، لیکن وہ لیٹ ہوتا گیا۔ تو 6 ماس کے بعد جولائی کی 13 تاریخ 1969 ہم مدھوبن پہنچے تھے۔ مدھوبن اس سمے کیا تھا، آپ سب مدھوبن دیکھ چکے ہیں، پرانا مکان جو بابا کا کمرہ جہاں ہے، اماں کا بھی وہیں کمرہ تھا جہاں پر وہاں ایشو دادی کی آفس ہے، وہیں پر چھوٹا سا ہال تھا جہاں کلاس ہوتا تھا۔ دوسرا کوئی مکان بنا ہوا نہیں تھا، ایک بیل باندھنے کی جگہ تھی، ایک چھوٹا ایک کمرہ تھا۔ اسی پرانے مکان میں ہی ہم 3 بھائی رکے تھے جو بامبے سے آئے تھے، تینوں نیوی میں تھے۔ اس سمے 2 بھائی ینگ مدھوبن میں رہتے تھے، ایک بلدیو بھائی تھے، ایک راج کمار بھائی، اور اس کے علاوہ دادا وشو کشور، دادا وشو رتن، یہ دونوں دادا وہاں پر تھے۔ ہم لوگوں کا پلان 1 ہفتہ رکنے کا تھا، بابا سے جب پہلے مما سے ملے تھے بامبے میں اور پھر یہاں آنے پر مما سے بھی ملے، بابا سے بھی ملے، لیکن پہلی بار جب بابا سے ملے تھے تو پہلا ایکسپیرئنس بہت ہی امنگ اتساہ دلانے والا کہیں یا تو انبھو کرانے والا کہیں، کیونکہ ایک من میں یہ پکا کر کے آئے تھے کہ شیو بابا کے جو پتر آتے ہیں تو اس بار بابا کو سنمکھ انبھو کرنا ہے۔ تو جب ہم پہنچے تھے نہانے دھونے کے بعد بابا کے روم میں گئے اور وہاں بابا کی گدی ہے جہاں، وہیں پر بابا بیٹھے تھے، ایک سائیڈ مما بیٹھی تھی اور 2 چھوٹی بہنیں تھیں جو مرلی لکھتی تھیں۔ وہ اس سمے انہوں نے گراموفون پر ایک ریکارڈ بھی بجایا، ان دنوں میں گراموفون ریکارڈ بجتے تھے، اب یاد نہیں ہے کون سا گیت تھا، لیکن پرانے گیتوں میں سے آپ سمجھ سکتے کوئی ایک گیت ہوگا۔ لیکن ایک ہی من میں امنگ تھا نہانے دھونے کے بعد، ان دنوں کی رہن سہن تو بہت سمپل تھی، اب میں کیسے ورنن کروں وہ ذرا کٹھن ہوگا۔ بالٹی میں پانی لے کے آتے تھے ہینڈ پمپ سے، اور جو باتھ روم تھے وہ ٹین کنستر ہوتا نا وہ کاٹ کاٹ کر کے اس سے وہ پارٹیشن کر کے باتھ روم بنے ہوئے تھے پر اس کی چنتا نہیں تھی سمپل ایک دم لائف ایک ہی لگن کہ ہم بابا سے ملنے آئے تو بابا کے روم میں جب جا کر کے بیٹھے جیسے ابھی روم ہے ابھی تھوڑا بڑا کر دیا ہوا ہے اس سمے وہ الگ تھا پورشن تو بابا سامنے گدی پر بیٹھے تھے مما بھی پاس میں بیٹھی تھی جا کر کے بابا کے سامنے بیٹھ گئے اور بابا سے درشتی لینے لگے بہت پیار سے بابا درشتی دے رہے تھے درشتی دیتے دیتے تھوڑے ٹائم میں ایک دو منٹ میں بہت سندر انبھو ہوا جو شیو بابا کی لائٹ ہے وہ بابا کے مستک پہ سپشٹ جیسے انبھو ہو رہی تھی اور اس سمے کی جو میری کیا کہیں استھتی بہت ایک خوشی کی لہر کہو اتیندری سکھ کہو بہت گہرائی کا بھی تھا اور بہت ایک شکتیشالی بھی تھا جس چیز کی جیسے چاہنا تھی بابا نے پہلی ملاقات میں وہ چاہنا پوری وہ بابا کی درشتی ملتی رہی ہم اس کا آنند لیتے رہے کوئی جلدی نہیں تھی کہ جلدی ملنا ہے یا بات کرنی ہے نہیں میں سمجھتا ہوں 8-10 منٹ پر اس 8-10 منٹ کے اندر بابا سے من ہی من میں جیسے بات کر رہا تھا میں کہ سچ مچ آج آپ اتنے سپشٹ ریتی سامنے مل رہے ہیں آج سے یہ جیون جو ہے یہ آپ کی سیوا کے لیے سمرپت ہوگی کوئی سمرپن پتر نہیں لکھا کسی سے پرمیشن نہیں لی گھر والوں سے بھی نہیں پوچھا لیکن آپ اپنے دل میں جیسے بابا سے بات کی اس کے بعد بابا سے گلے ملے اور بابا نے مکھ میں ٹولی کھلائی پھر مما سے ملے ایسے کرتے 10-12 منٹ بیت گئے پھر سامنے بیٹھے پھر بابا نے بات چیت شروع کی تھوڑی تھوڑی بچے اپنے گھر پہنچ گئے آرام سے رہنا سارا ٹائم بابا مما کا بچوں کے لیے ہے جب چاہیں بچے بابا سے مل سکتے ہیں اس طرح سے بابا کی پہلی پہلی ملاقات ہوئی اور پھر بابا نے کہا دیکھو آج صبح بابا کی مرلی بہت اچھی تھی دو تین باتیں سنا دی اس میں سے اور پھر ہماری بہن جی جو لے کے آئی تھی ساتھ میں ارملا بہن کو کہا کہ ان کو ابھی آپ صبح والی مرلی سناؤ بہت اچھی مرلی تھی بھوجن بعد میں کرنا بابا کا ایک نیم تھا ایک تو سویرے سویرے مرلی سننی और फिर ईश्वरी सेवा किए बिना नाश्ता नहीं करना, तो फिर मुरली सुनी उस दिन की, और उसके बाद फिर भोजन किया, आराम किया। बाबा के पास टाइम बहुत था हमारे लिए, मिलने का भी हमें बहुत मन होता था, जब चांस मिले बाबा के पास चले जाएं, बाबा बहुत प्यार से बात करें। शाम के टाइम 5 से 6 बैडमिंटन खेलते थे, तो बाबा की एक विशेषता जो हम नोट करते थे, कोई भी कार्य कर रहे हैं, बाबा का अपना पुरुषार्थ कहो, अंदर ही अंदर ये होता था कि मन बाबा से लगा रहे। हम जब सामने जाएं, एक सेकंड में बाबा के चेहरे पर चेंज आती थी, नैनों में चेंज आती थी, मुस्कान आती थी, स्पष्ट होता था शिव बाबा की प्रवेशता फट से हो जाती। तो शाम को बैडमिंटन खेलना, एक बाबा और मम्मा दोनों अपनी अपनी टीम के साथ, हम लोग साथ खेलते थे, घंटा भर खेलते। उसके बाद फिर उन दिनों में ज्यादा क्लासेस नहीं होती थी, सुबह मुरली का एक क्लास और रात्रि क्लास जो होता था भोजन के बाद, भोजन भी जल्दी होता था, 7 बजे भोजन हो जाता था। उस क्लास में जो सेंटर से कुछ समाचार आते थे, सेवा के समाचार बहनें लिखती थीं या जगदीश भाई लिखते थे, वो सुनाया जाता था, और उसके बाद मम्मा की 15 मिनट मुरली होती थी, फिर बाबा आते थे, 15 मिनट बाबा की मुरली, खुश खैर आफत पूछते बच्चों की, सब ठीक है, और 15 मिनट की मुरली के बाद फिर बाबा 3 मिनट साइलेंस कराते, क्लास पूरा हो जाता। फिर क्या करते, बाबा के रूम पर जा करके, बाबा पलंग पर लेट जाते और हम लोग पास बैठ जाते, फिर बाबा कोई अपने अनुभव की बातें, राजाओं महाराजाओं के साथ के बिजनेस के टाइम की कुछ बातें, कुछ ना कुछ, जैसे हम गांव में देखते थे जो बुजुर्ग हमारे होते थे ना गांव में, वो बच्चों को कोई ना कोई पुरानी कहानी सुनाते, कुछ सुनाते, तो बाबा इस तरह से बहलाते थे, आधा पौना घंटा ऐसे बहला करके, फिर हम लोग वहां से उठ के किचन में जाके दूध पी के 10 बजे के अंदर सो जाते थे। दिनचर्या बड़ी एक सहज राजयोग की थी, बहुत ज्यादा हैवी ना स्टडीज थी ना कोई इस तरह की दिनचर्या थी। एक दिन मम्मा को कहा बाबा ने, बच्चों को जाओ पिकनिक करा के लाओ, तो विश्वरतन दादा मटकी में कुल्फी वो लेकर के, मम्मा को भी साथ में और भी थोड़े से थे, अनादरा पॉइंट गए, जहां गणेश मंदिर अब बन गया है वहां मंदिर ऐसी, ये कितनी सी वो शिला थी वहां, उसके पास में रॉक खाली, वहां बैठ करके मम्मा ने पहले बहुत प्यार की दृष्टि देते योग कराया, फिर थोड़ी मुरली, और उसके बाद एक एक को बहुत प्यार से गले लगा के मुख में कुल्फी दी, कुल्फी पिकनिक करके आए। ऐसे ही बाबा के साथ भी सूप और पोटैटो और पनीर की और साथ में कोई स्वीट टोली कलाकंद वगैरह, उसकी पिकनिक भी की, ब्रह्मा भोजन भी गुरुवार के दिन बाबा के साथ बैठ करके किया। इस तरह से एक प्रकार से बाबा ने उस पहली विजिट के टाइम पर वो अनुभव कराया जो कहा जाता है ना, तुम्ही से सुने, तुम्ही से तुम्ही को देखें, तुम्ही से सुने और तुम्ही से खाएं, तुम्ही से खेलें। वो प्रैक्टिकल सारे दिन की दिनचर्या जैसे बाबा मम्मा के साथ चलती थी, लेकिन उसमें एक खास बात जो बाबा को या मम्मा को देखते थे, हमेशा एक तो बाबा की जो बातचीत होती थी लिमिटेड, बड़ी रॉयल, सिवाय ज्ञान युक्त बात के दूसरी बातों में नहीं जाते थे, आलतू फालतू बात नहीं करते थे। बाबा कहते थे बड़े रॉयल बच्चे हैं, तो रॉयल फैमिली के जो बच्चे होते हैं बहुत कम बोलते हैं और बहुत श्रेष्ठ भाषा बोलते हैं। तो बाबा जैसे प्रैक्टिकल करके दिखाते थे। और फिर एक नेचुरल योग कैसे बाबा उसका अभ्यास करते रहते थे, बैडमिंटन खेल रहे हैं तो भी योग युक्त होके, इंडोर गेम कोई खेलते तो भी योग युक्त होके, और साथ साथ बाबा पत्र लिखेंगे कुछ भी है तो ज्ञान के सिवा दूसरी बात पत्रों में नहीं होगी। इस तरह से 7 दिन इतने सुंदर बीते, मेरा मन ही ना हो जाने का। लौकिक गांव में जाना था पंजाब में, पर छुट्टियां थी 2 महीने की, मैंने सोचा अभी गांव में जाकर के सेवा करेंगे वो अलग बात है, लेकिन बाबा के पास थोड़ा और रुक जाता है। तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा मेरा मन है मैं थोड़ा और रुक जाऊं, मेरी छुट्टियां तो हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे ये आपका घर है, जितना टाइम रुकना है रुक जाओ। तो मेरे साथी वो दिल्ली के रहने वाले थे वैसे, वो तो दोनों चले गए और मैं अकेला रह गया। फिर बहुत मजा आता था, फिर 3 दिन के बाद एक टेलीग्राम आ गई मेरे एक दोस्त शिप से, उन्होंने टेलीग्राम की जो हमें ज्ञान में लाए थे उसी की टेलीग्राम थी, एनफ विद गॉड स्टोरी, कम बैक सून, प्रमोशनल एग्जाम फिक्स्ड फॉर सो एंड सो डेट। इस तरह से बाबा ने टेलीग्राम पढ़ी, वो पूछा ये किसने भेजी है, मैंने बताया बाबा यही भाई हमें ज्ञान में लाया था। तो बाबा ने कहा इसको निश्चय नहीं है। और मुझे याद आया बहन जी जब निश्चय पत्र लिखवाती थी हम लोग 100% लिखते थे, वो 99% लिखता था। तो खैर उसको उसने जो टेलीग्राम की उसका कारण था वो पहले एक बार फेल हो चुका था एग्जाम में, तो उसको डर था कि ज्ञान में आने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ाई पर ध्यान ही ना दें। खैर मैं तो वापस जा करके एक हफ्ता पढ़ा, एग्जाम दिया, फर्स्ट आ गया अपने एग्जाम में और फिर प्रमोशन वगैरह भी हो गई। लेकिन वापस जाने के बाद पहला काम मैंने क्या किया, अपना होम एड्रेस चेंज करवा दिया, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा पांडव भवन माउंट आबू राजस्थान, जबकि मेरा परमानेंट एड्रेस पंजाब का था, गांव का था, उसकी बजाय माउंट आबू का लिखवा दिया, अपने रिकॉर्ड्स में चेंज करा दिया सारे। तो इस तरह से बिगनिंग हुई थी। फिर तो 10 साल बाबा के साथ बिताए, उस 10 साल में अब बाबा ने पहले बहुत जैसे छोटे बच्चों को प्यार दिया जाता है, पुचकार दी जाती है, इस तरह से पालना की मम्मा ने भी बाबा ने भी। और लकीली ऐसा था कि बाबा और मम्मा का बॉम्बे में आना बहुत होता था और आते थे तो 3-3 महीना, 2-2 महीना, 1-1 महीना रुकते थे। तो पहली बार ही जब मैं होकर के वापस गया था तो मेरी 40 दिन की छुट्टियां बाकी थी और बाबा अक्टूबर 1959 में बॉम्बे आए थे। हैंगिंग गार्डन जहां है उसके पास में एक बिल्डिंग है ब्लू हेवन, वहां रुके थे। तो वो 40 छुट्टियां मैंने ली, रहा सेंटर पर था और फिर जाता आता था। तो उन दिनों में बाबा का क्लास रोज नहीं होता था सेंटर पर, बाबा का क्लास गुरुवार के दिन और रविवार के दिन होता था, बाकी दिन दादियां भी, पुष्प शांता दादी, रतनमोहिनी दादी, रतनमोहिनी दादी के माता जी देवी माता, शीलिंद्रा दादी उनके माता जी क्वीन मदर, और उनके साथ रामी बहन थी, वो सब कोलाबा से आते थे बाबा के पास हैंगिंग गार्डन में। तो वहां आकर के हम लोग बैठते थे, बाबा किसी को टेलीफोन पर एक माता को मुरली सुनाते थे, पर मुरली ऐसे चलती थी, ये नहीं कि माता को सुना रहे हैं, मुरली ऐसे होती थी जैसे सारे विश्व को सुना रहे हैं। और हम लोग नोट्स लिखते थे सामने बैठ करके। मुरली के बाद फिर बाबा का जो हुक्म कि जब तक सेवा नहीं की तब तक नाश्ता नहीं करना, तो फिर हैंगिंग गार्डन या तो गार्डन में चले जाना, कोई ना कोई मिलते थे उनकी सेवा करनी, या तो फिर पास में मंदिर में चले जाना, कभी जैन मंदिर में, कभी शिव मंदिर में, कभी कृष्ण के मंदिर में, क्योंकि वो बॉम्बे में मंदिर बहुत हैं, बनगंगा करके एक उधर वो भी स्थान है, सेवा करके फिर आकर के बाबा को समाचार सुनाते थे कि किसको मिले और क्या सेवा की, फिर बाबा उसमें करेक्शन करते थे, ऐसे नहीं समझाना है, ऐसे समझाना। तो वो एक प्रकार से हमारी ट्रेनिंग पीरियड शुरू हो गया था, क्योंकि वो 40 दिन की छुट्टियों में बाबा ने लक्ष्य रखा कई बातें सिखाने के लिए। यज्ञ की कई कारोबार होती है, उसमें दादा विश्व किशोर वहां थे, उनके साथ में कभी प्रिंटिंग जॉब्स के लिए जाना, कभी खरीदारी के लिए जाना, कभी कुछ कभी कुछ, इस तरह से। दादी कुमार का उस समय वहां नहीं थी, वो फिर पटना में थी, पटना से वहां के एक भाई थे जलान बाबू जो निमित थे वहां सेंटर के लिए, उनके साथ आई थी दिवाली के टाइम पर। और उसी समय दीदी मनमोहिनी दिल्ली से आई थी, तो बाबा को एक खास, बाबा की बात जो हमने आज से देखी कि जो सर्विसेबल बच्चे बाबा को बहुत प्रिय लगते थे, और उन बच्चों की हर तरह से संभाल कहो, उनको रिफ्रेश करना, उनको अपने साथ बिठा के भोजन कराना, दृष्टि से उनको अच्छी तरह से शक्तिशाली बनाना, कुछ ज्ञान के हिसाब से कुछ ऐसी गहरी बातें बाबा सुनाते थे, तो एक प्रकार से वो रिफ्रेश करने का बाबा का एक लक्ष्य। और दूसरा होता था कि बाबा को खुद सेवा का बड़ा शौक था। बहुत अच्छे अच्छे लोग बाबा से मिलने आते, और बाबा जैसे ये सफेद चादर है ना, तो नीचे बैठ करके सामने उनको दृष्टि देते, समझाते, इस तरह से। तो वो हमने बॉम्बे में 1959 में, 1960 में, 1961 में, फिर 62 में बाबा दिल्ली गए थे, फिर 63 में, फिर 64 में, 65 में फिर दोबारा दिल्ली गए थे, फिर 66 में, 66, 67 लास्ट में बाबा बॉम्बे आए थे। तो वो बाबा का जो बॉम्बे आना होता था, उस बीच में मैंने 1963 में नेवी छोड़ दी थी। वो भी बड़ी लंबी कहानियां हैं, किस तरह से साइन किए हुए थे 10 साल के, हम 5 साल के अंदर छोड़ना चाहते थे, खींचातान चलती थी। उस समय बाबा पत्र लिख करके क्या सिखाते थे, इनको क्या समझाना है, और ऐसा नहीं कि कोई रॉन्ग बात बताएं, उनको बताइए कि भाई मैं ईश्वरी ज्ञान और योग के द्वारा भारत को फिर से राम राज स्थापन करने के लिए मुझे सेवा करनी है, उसके लिए मुझे समय नहीं मिलता है नेवी में रह करके, इसलिए मैं नेवी छोड़ना चाहता हूं। तो उसमें टाइम तो लगा था, लेकिन 1963 में नेवी छोड़ दी थी। उसके बाद बाबा ने फिर और अच्छी तरह से, जैसे हमें पता नहीं बाबा के मन में जो बात थी, वो बाबा मुझे हमेशा एक बात कहते थे, बच्चे, क्योंकि मुझे कोर्स वगैरह कराने का बड़ा शौक था, तो मैं लिखता था बाबा इसको कोर्स कराए, इसको कोर्स कराए, तो बाबा लिखते थे, बच्चे ये तो ठीक है, और क्या किया तुमने, तुमको तो ऑलराउंड सर्विस करनी है। उसमें ऑलराउंड सर्विस का भाव बाबा का होता था, एक तो विदेश से जो आते हैं भारत में उनकी सर्विस, दूसरा न्यूज़पेपर्स के द्वारा, तीसरा बिजनेसमैन की सर्विस, चौथा प्रिंटिंग जॉब्स, पांचवा आर्टिस्टों की सर्विस। क्योंकि बाबा को जब कोई नया सेंटर खुलता था तो उन नए सेंटर्स को ये चार चित्र पेंट कराए हुए ऑयल पेंट में बनवा के देने का शौक था। 6x4 के, 6x4 के कैनवेस के ऊपर चारों में कौन से चित्र हैं, एक त्रिमूर्ति और गोला, कल्पवृक्ष, सीढ़ी और लक्ष्मी नारायण का, ये चार चित्र हर सेंटर पे होने चाहिए। तो वो फिर आर्टिस्टों से बनवाते थे और प्रिंटिंग भी, जो यही चित्रों की प्रिंटिंग भी करवाई थी, वो उन दिनों की प्रिंटिंग और आज की प्रिंटिंग में बहुत फर्क है। तो प्रिंटिंग जॉब्स थे, फिर यज्ञ के लिए खरीदारी, जैसे दादा वैश्यक शोर हमें साथ में लेके गए यज्ञ के लिए, ब्लैंकेट्स खरीदने थे तो ब्लैंकेट्स अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी होनी चाहिए लेकिन ज्यादा कीमत भी नहीं चाहिए। रेमंड के ब्लैंकेट खरीदे थे लेकिन उसमें ए ग्रेड डिफेक्टिव, माना एक धागा कोई उसमें निकल रहा हुआ होगा ना तो वो डिफेक्टिव माना जाएगा। वैसे सारा ब्लैंकेट बहुत अच्छा, एक धागा कहीं एक्स्ट्रा निकला हुआ, वो भी क्वालिटी कंट्रोल में इतना उनका ध्यान था। तो वो चीज, वैसे उसकी कीमत 150 रुपया थी उस समय नए की, लेकिन जब ऐसी कोई ए क्लास डिफेक्टिव तो उसकी कीमत हो जाती थी 40 रुपए। तो वो फिर कहां से मिलते थे, उनकी फैक्ट्री जहां थी तो बॉम्बे से काफी दूर होती थी, जाना आना, मतलब इस तरह से कई बातें यज्ञ की बाबा ने सिखाई थी। आज समझ में आता है कि क्यों सिखाई थी, लेकिन उस समय ये नहीं समझ में आता था, क्योंकि फिर बीच बीच में बाबा की मुरली आती थी माउंट आबू में, भाई बाबा के पास कुछ ऐसे बच्चे चाहिए सर्विसेबल, तो मैं अपनी ऑफर करता था तो बाबा कहता था बच्चे यहां क्या करोगे आके, पढ़े लिखे बच्चों की सेवा तो बड़े शहरों में है, यहां कौन रहते हैं, भील और ग्रासिये रहते, तुम्हारी भाषा भी नहीं समझेंगे वो। तो खैर वो बाबा का क्या प्लान था, क्यों इस तरह से, वो तो हम समझ नहीं पाए, लेकिन साकार बाबा के होते हुए बॉम्बे में ही बाबा ने रखा। 1964 से दादी प्रकाश मणि बॉम्बे में आई थी, एग्जीबिशन बनी थी उस समय और उसमें सहयोग देने के लिए बाबा ने पटना से उनको वहां भेजा। फिर वो 64 ऑनवर्ड्स एग्जीबिशंस का दौर चला, चारों तरफ एग्जीबिशंस होती थी, सब भाई बहने इकट्ठे होते थे, मुख्य मुख्य जो भी, बहुत मजा आता था। वो सेवा एक अपने टाइप की थी, इतना आनंद आता था। बड़ी दादी जी उसमें, गुलजार दादी जी उसमें, मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, हमारे रमेश भाई, उषा बहन, नलनी बहन और दादी रतन मोहिनी, दूसरे भी ये क्या नाम है, गुलजार दादी, सभी और जगदीश भाई, ऐसे सब महारथी इकट्ठे हो जाते थे मिलजुल करके, वो आनंद आता था सेवा का। ये सब होते हुए भी बाबा ने एक बात का ध्यान सदा खिंचवाया, साकार बाबा के पत्रों के द्वारा चार्ट लिखने के ऊपर। सुबह से शाम तक मनसा क्या रही, वाचा के द्वारा क्या सेवा की, ज्ञान की कौन सी नई बातें आप अपने जीवन में धारण की, कोई ऐसी ऊंची नीची बात तो नहीं होगी। इस तरह से बाबा को हर हफ्ते चार्ट भेजते थे। कुछ टाइम के बाद, 6.5-7 साल के बाद, बाबा ने एक दिन लिखा, बच्चे अभी तुम अपने पास रखो, बाबा को जब चाहिए तब मंगा लेंगे। बॉम्बे की बात है ये भी। अब बाबा ने काफी टाइम तो मंगाया नहीं चार्ट, कितने महीने बीत गए, 3-4 महीने बीत गए होंगे। तो मैंने फिर सोचा बाबा को अभी मेरा चार्ट ठीक लगता है, लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिन के बाद पत्र आ गया, बच्चे अपना पिछले हफ्ते का चार्ट भेजो। अब लिखा ही नहीं तो मैं झूठ मूठ कैसे लिखूं। तो बाबा को लिखा मैंने कि बाबा आपने इतना टाइम तो मंगाया नहीं, तो मैंने समझा कि अभी जरूरत नहीं है, तो लिखना बंद कर दिया। आज से लिखना शुरू करूंगा, फिर मैं हफ्ते के बाद भेज दूंगा। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे को समझ में आया कि देखो, जो इतना टेंशन चार्ट लिखने से रहता था वो तो बीच में थोड़ा थोड़ा ढीला होता गया। तो बाबा की जो दी हुई श्रीमत है उसका मतलब एक्यूरेटली ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। फिर चलते चलते, देखिए, ईश्वरी ज्ञान और योग का अभ्यास करने वाले जो हैं उनकी आंतरिक स्थिति बहुत सेंसिटिव हो जाती है। सेंसिटिव समझते हैं ना, अच्छी बात के लिए भी सेंसिटिव है और अगर कोई अच्छी नहीं होती तो उसके लिए भी सेंसिटिव है। अगर कोई भूल हो जाएगी तो उसकी फिर एकदम चिंता ऐसे चलती रहेगी, काफी टाइम लगता है फिर से रीसेट होने में। तो बाबा का 3-4 बातों पर बहुत ध्यान हमेशा खिंचवाते थे, एक चार्ट लिखने पर, दूसरा नई सर्विस क्या की, सर्विस में कोई नवीनता होनी चाहिए। बाबा को कोई नया चित्र बना के भेजते थे तो बाबा को अच्छा लगता था, लेकिन बाबा को अगर वो क्लियर नहीं तो बाबा कहते थे ये टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। सीढ़ी का चित्र जब बनाया था तो बाबा को हमने थोड़ा पेन जैसे नहीं, रफ स्केच बना के भेजा, तो बाबा का पत्र आया। उस समय एग्जीबिशन में थे कानपुर में, 1965 की बात है। तो बाबा ने लिखा, बच्चे ये तुम क्या कीड़े मकोड़े बना के बाबा को भेज दिए, अपना भी टाइम वेस्ट करते हो, बाबा का भी टाइम वेस्ट करते हो। पर मेरे मन में बड़ा कंसेप्ट क्लियर था कि ये क्या बाबा करवा रहा है, क्योंकि मुरली में से ही वो पॉइंट थी, आप ही पूजे आप ही पुजारी, उसके बारे में। वैसे मुझे बाबा के पास आना था वहां से, कानपुर से, लेकिन प्रदर्शनी पूरी हुई और मैं वापस बॉम्बे गया। بامبے جا کر کے آرٹسٹ سے چتر بنوایا رنگین کلرفل، اور پھر اس کی سلائیڈ بنائی ایک، تو ایک سلائیڈ پروجیکٹر اور سلائیڈ لے کر کے مدھو بنایا اور بابا کو چھوٹے ہال میں وہ بیڈ شیٹ ہی تھی اس سمے، اور تو کوئی اسکرین تھی نہیں، یہاں تو ابھی اچھی اچھی اسکرین لگ جاتی ہیں، تو اس کے اوپر دکھایا بابا کو سارا چتر، اس کے بعد بابا کو اچھا لگا، اور تھوڑے ٹائم کے بعد بابا بامبے آئے، اور اس کے بعد بابا نے وہ چتر اپنے پاس منگایا، اپنے بیڈ روم میں رکھا۔ پہلے دن مطلب کلاس کے اندر بہت بابا نے پیار دیا، بہت تعریف کی، ایک دم جیسے کیا کہیں نشہ چڑھ گیا۔ دوسرے دن بابا کہتا ہے بچوں کی تو بے بی بدھی ہے، دیکھو یہ چتر بنایا ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایک مرلی کے اندر آٹھ باتیں بتا دی۔ دوسرے دن اور ایک دو بات سنا دی، تیسرے دن اور سنا دی، اس کے بعد پھر اس چتر کی ریفائننس اور ہوتی گئی۔ جو اس سمے چتر بنا ہوا ہے وہ فائنل چتر بھی بنا، اور اس کا جو ہیڈنگ تھا وہ جگدیش بھائی جی نے پھر اس کو چینج کر، پہلے ہیڈنگ آپ دیکھیں گے پرانی کوئی سلائڈز ملیں گی یا پرانے چتر ملیں گے تو اس میں وہی ہیڈنگ تھی، آپ ہی پوجا آپ ہی پجاری، بعد میں براتا جی نے اس کو چینج کیا، بھارت کے اتھان اور پتن کے 84 جنموں کی کہانی۔ تو اس طرح سے، اور بابا کو میں ایک یوں کہوں کہ میری یہ ایشوری جیون کو مولڈ کرنے کے لیے مما کا اور بابا کا، بعد میں دادیوں کا بہت ایک سہیوگ ملتا رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو بابا کو دیکھ دیکھ کر کے سیکھتے تھے، کیونکہ بابا کے پاس کسی کو لے آتے تھے، کوئی ایڈیٹر کو لے آئے، کوئی منسٹر کو لے آئے، کوئی اور، تو بابا نیچے بیٹھ کر کے جیسے سمجھاتے تھے تو ہم پاس بیٹھ جاتے تھے ایک سائڈ پہ، اور بابا کو دیکھتے رہتے تھے کہ بابا کس طرح سے ان کی نبز کو جان کر کے کہاں سے شروع کرتے ہیں، کیسے ان کو دھیرے دھیرے انجیکشن لگاتے ہیں اور ان کو اتنا امنگ میں لے آتے ہیں، خوشی میں لے آتے ہیں، اور ایک ہی سٹنگ میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ان کو سمجھا کر کے ایسا نشچے کروا دیں اور لاسٹ میں ان کو سائلنس میں بٹھا دیتے، اس میں ان کو بہت اچھا انبھو ہوتا تھا۔ بڑے بڑے لوگ ملتے تھے بابا سے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور نیوز پیپرز کے ایڈیٹرز، ایسے بہت سے لوگ، کیونکہ بامبے میں اور مدھوبن میں دونوں جگہ پر یہ دیکھا تھا کہ بابا کو ویکتیگت سیوا کرنے کا بہت شوق رہتا تھا، سمجھا کر کے پھر لاسٹ میں درشتی دے کے پھر ٹولی دیتے تھے، اور کوئی چھوٹی موٹی سوگات بھی دے دیتے تھے، کوئی پڑھنے کے لیے کوئی۔ دوسرا تھا بابا کو ہر سال دیوالی اور شیوراتری پر سبھی سینٹرز کے لیے کوئی نہ کوئی ایشوری سیوا کی نئی چیز چاہیے، تو بابا کوئی نہ کوئی گفٹ ہر سال بنواتے تھے، اور گفٹ بنوا کر کے سبھی کو فری دینے کا سینٹرز کو، کہ بچوں کے لیے، ارے باپ بے حد کا باپ ہے، دیوالی پر और शिवरात्रि पर बच्चों को गिफ्ट तो कोई मिलनी चाहिए, तो उस समय बाबा कभी कैलेंडर बनवाया, कभी कोई और चीज बनवाई, जिससे के सेवा भी करें और साथ में उनके यूज में भी आए वो चीज। ऐसी ऐसी चीजें बाबा बनवाते थे। तो बाबा को लास्ट की जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, बाबा को समय की बहुत वैल्यू थी और समय का भाव है कि हम आत्माओं का ये जो 63 जन्म का हिसाब किताब है उसको पूरा समाप्त करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत है। बाबा का इशारा मिलता था, जैसे अभी आज भी मुरली में था, 8 घंटे जॉब करते हैं, 8 घंटे बाबा कहते थे भले अपने ऊपर दीजिए, आराम करिए जो भी करना है, और बाकी 8 घंटे उसमें मेडिटेशन और मुरली और सर्विस उसमें जाने चाहिए। और फिर लास्ट में धीरे धीरे बाबा को जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया 1965 में, 1967 में दादा विश्व किशोर ने शरीर छोड़ा, सारा जिम्मेदारी बाबा के ऊपर आ गई थी। पर उसके बाद बाबा को साइलेंस की तरफ बहुत खींच कहो, बाबा की दिलचस्पी कहो, या यूं कहें कि बाबा को बड़ी क्लैरिटी थी कि साइलेंस में जितना समय देंगे, बाबा के साथ मन लगा रहेगा तो बाबा के समान बनते जाएंगे। हम लोग जो पहले का अभ्यास था कि कोई भी सेवा करते थे तो बाबा को डिटेल में सुनाते थे, बाबा ये सेवा हुई, ये किया वो, लास्ट के 2 साल 67 और 1968 वो बाबा को जैसे देखते थे एकदम फरिश्ते की तरह, और बाबा थोड़ा सा सुनते और थोड़ा सा सुनने के बाद बाबा कहते हां बच्चे, बाबा ने समझ लिया और फिर दृष्टि देने लगते, साइलेंस। और उन दिनों का ये मेरा एक विशेष अनुभव बाबा के झोपड़ी का है बाबा 11:30 बजे के करीब झोपड़ी में जाके बैठ करके अकेले तपस्या करते थे, और अगर किसी को कोई बात करनी हो तो वहां टाइम देते। तो मैं बाबा से टाइम लेकर के सुबह को टाइम लिया था, उस अनुसार गया वहां, तो देखा बाबा एकदम बहुत गहरी साइलेंस में, और उस समय का जो वहां का वाइब्रेशन था इतना चुंबकीय, इतना शक्तिशाली कि वहां बाबा के पास में जाके बैठ गया। और मैं खुद इतना उस समय अव्यक्त अनुभव में चला गया, تھوڑے ٹائم کے بعد جب بابا نے ایسے مڑ کے میری طرف دیکھا, درشٹی دیتے رہے, اور مجھے اس سمے بابا سے جو درشٹی مل رہی تھی اس سے بہت بل مل رہا تھا. اور اس میں میں یہ بھول گیا کہ مجھے بابا سے پوچھنا کیا ہے, کس لیے میں نے بابا سے ٹائم لیا, کیا بولنا تھا. پھر بابا نے اشارے میں پوچھا, ہاں بچے کچھ پوچھنا تھا. میں نے کہا بابا مجھے تو بھول گیا, کیا پوچھنا تھا وہ میں بھول گیا, جب یاد آئے گا پوچھ. تو بابا درشٹی دیتا رہا اور میں بھرپور ہوتا رہا. وہ مجھے یاد نہیں آیا کہ کس لیے آیا تھا بابا کے پاس. تو اس طرح کی یہ میری مطلب کچھ انبھو کی باتیں ہیں, کیونکہ آپ کو وہی انبھو سنانا چاہتا تھا جس سے آپ کو ایک آئیڈیا ملے کہ جس جیون میں ہم لوگوں نے اپنا قدم رکھا ہے اور اس میں بھی سمرپت ہو کر کے جب سیوا میں آتے ہیں تو اس میں دونوں باتوں کا بابا جیسے ایگزامپل ہمارے سامنے رہا, ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. کمار بھائی خاص کر سروس میں بہت دلچسپی لیتے ہیں, دوڑتے رہیں گے, بھاگتے رہیں گے, نہ دن دیکھیں گے نہ رات دیکھیں گے. لیکن بابا نے ہمیں چاروں سبجیکٹ کا بیلنس رکھنے کے لیے سوئم کا مثال سیٹ کر کے دکھا. امرت ویلے کا کتنا مہتو ہے وہ بابا نے بتایا. سارے دن میں اپنی مانسک ستھتی کتنی اونچی رکھنی ہے اس کا وشیش اشارہ دیتے رہے. سونے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے اس کا اشارہ دیتے رہے. کس لیے؟ ایک ہی بات تھی بابا کے پاس کہ سن شوز فادر. بچوں کو دیکھ کر کے ان سب کو یہ ساکشاتکار ہو کہ یہ بچے اگر اتنے شریشٹھ ہیں, ان کے پرکمپن اتنے پاون ہیں, ان کی وانی اتنی میٹھی ہے, ان کی درشٹی اتنی پیور ہے, تو ان کو بنانے والے جو ہیں وہ کیا تھے. ان کا بدھی یوگ سہج بابا کی طرف جائے. تو ایسی ایسی باتوں پر جب دھیان جاتا ہے, اور خاص کر آپ دیکھ رہے ہیں ورتمان سمے, چاہے ساکار مرلی ریپیٹ ہو رہی ہے, چاہے اویکت مرلیاں ریپیٹ بھی ہو رہی ہیں, یا جب تازی سنتے ہیں, تو باپ دادا کی ایکسپیکٹیشن ہم بچوں سے کیا ہے؟ کون سی ایکسپیکٹیشن ہے؟ کیا چاہتے ہیں بابا؟ کہ ہم بچے باپ سمان بن جائیں, ہر ایک کے چہرے سے, ہر ایک کے نینوں سے بابا ہی نظر آئے. تو جتنا ہم بابا کو اپنے دل درپن میں صدا رکھیں گے, اپنے ہردے پٹل پر کہو, اپنے منسا سمرتی پر کہو, تو جتنا ہماری سمرتی وہ رہے گی اتنا وہ ریفلیکٹ کرے گی, دوسروں کو وہ دیکھنے کو ملے, وہ وائبریشن ملے گا, اور اس سے آپ کو خود کو بہت اندر اندر سکھ بھی ملے گا, और निश्चय पक्का होगा कि हम सचमुच बाप दादा की आशाओं को चारों ही सब्जेक्ट में पूरा करेंगे, किसी बात में भी कम नहीं रहेंगे। तो इस भट्टी के दिनों में ये विशेष समय मिलेगा आपको रिफ्लेक्शन के लिए, और उसके साथ साथ अभ्यास करके अच्छी तरह से अनुभवी बनने के लिए। ओम शांति। बैठेंगे बाबा की याद में थोड़ा।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और ऐसे ही लग रहा था कि हम भी जैसे कि बाबा के साथ साथ हैं। ऐसा बहुत अच्छा साकार बाबा के समय का। आप सबको कैसा लगा? आपको जब बाबा ने, आपने जब बाबा को लेटर लिखा और बाबा ने जब आपको लेटर लिखा, तो वो बड़ा महसूस हो रहा था कैसा महसूस होता होगा आपको भी। तो बहुत अच्छा, और साथ साथ आपने विषय को भी लेते रहे, बाबा चार्ट को कितना महत्व देते थे, तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा अनुभवयुक्त आपका क्लास रहा। और बाबा के इशारों को सबने इशारे इशारे में ही समझ करके अपने मन के अंदर बिठा लिया है। फिर से बहुत बहुत भाई साहब का धन्यवाद। हम सभी भाई साहब कह रहे उस अनुसार बाबा की याद में बैठेंगे और इन्हीं बातों को फिर से मन में ला करके दृढ़ करेंगे। ओम शांति।
ओ कितना प्यारा है, ओ कितना प्यारा है अपने प्यारे बाबा का प्यार, ओ कितना प्यारा है अपने प्यारे बाबा का प्यार। इसमें खुशियाँ है अपार, इसमें जन्नत बाहर, वो कितना प्यारा है अपने प्यारे बाबा का प्यार।